ओम शांति। बाबा वर्तमान समय के लिए एक कहावत कहते हैं, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है। यह संसार एक समय जो सचखंड था, जहां सच का बोलबाला था, आज वो संसार झूठ खंड बन चुका है। इस संसार में झूठ का बोलबाला है, चारों ओर झूठ का ही साम्राज्य है। तो इस झूठे संसार में हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार से उस झूठ का सामना करना पड़ता है, और उसमें से एक विशेष बात है कि हर एक को अपने जीवन में कोई ना कोई प्रकार से कभी ना कभी झूठे आरोपों को फेस करना पड़ता है। झूठे आरोप कब कहां कौन लगा दे, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस संसार के इतिहास को यदि देखें, चाहे लौकिक दुनिया या इस ब्राह्मण संसार में, तो जो महान आत्माएं कोई विशेष कार्य करके गई है, उन सभी ने अपने जीवन में इस झूठे आरोपों को फेस किया है। उन झूठे आरोपों को फेस करके वो जीवन में आगे बढ़े हैं, अपने मंजिल को प्राप्त किया है, और आज वही आत्माएं इस संसार के लिए आदर्श है। जैसे कि साकार बाबा के जीवन में देखें, तो यज्ञ की स्थापना के समय ब्रह्मा बाबा पर अनेक प्रकार के झूठे आरोप लगे। किसी ने हैदराबाद में एक ज्वारी है, व्यापारी है, दादा लेखराज के नाम से, वो अपने आप को भगवान कहता है, और उसको 16,108 रानियां चाहिए, 350 मिल चुके हैं। वो दादा एक जादूगर है जो लोगों पर जादू करता है, बंगाल से जादू सीख करके आया हुआ है। वो लोगों के आंखों में सुरमा लगाता है जिससे कि लोग उनके बस हो जाते हैं। वो घर बार फिटाता है, तो बहुत सारे ऐसे झूठे आरोप हैं, झूठे कलंक हैं जो साकार बाबा पर लगाए हुए थे। और उस समय बाबा के साथ साथ और जो ब्राह्मण आत्माएं थीं, जब उन्होंने सुना कि बाबा पर ऐसे ऐसे कलंक लगाए जा रहे हैं जो कि निराधार हैं, उनका कोई भी सच्चा प्रूफ नहीं है, तो कई आत्माओं के मन में ये भावना पैदा हुई होगी कि हम उनको कुछ सबक सिखाएं कि जिन्होंने झूठे आरोप लगाए। लेकिन बाबा ने क्या कहा, निंदा हमारे जो करे मित्र हमारा सोई। हाँ, उस समय कईयों ने कहा था कि उन पर हम मानहानि का केस करेंगे। दुनिया में जो और भी कई आत्माएं हुई हैं, कोई राजा या अन्य कई प्रकार की आत्माएं, जैसे कि आचार्य चाणक्य, उनके जीवन में भी हम देखेंगे, उनके बारे में पढ़ा है कि उनके साथ भी ये घटनाएं घटी, उनके ऊपर भी कई प्रकार के झूठे आरोप लगाए कि ये देशद्रोही है, ये राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यहां तक कि उनके ऊपर एक बार फांसी तक की सजा सुनाई गई झूठे आरोप में, ये विद्रोही आचार्य है। लेकिन जब बाद में वो बात प्रूफ हुई, सिद्ध हुई कि ये झूठे आरोप थे, तो इस प्रकार से जीवन में हर एक को इन झूठे आरोपों का सामना करना ही पड़ता है। चाहे झूठे आरोप बहुत संगीन हो या फिर छोटे मोटे हो, कमेंट बे में जो लोग एक दो पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जब किसी पर झूठे आरोप लगते हैं उस समय उस व्यक्ति की स्थिति डामाडोल हो जाती है। उसके मन में व्यर्थ संकल्पों के तूफान चलने लगते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे जीवन में कौन कौन से ऐसे झूठे आरोप लग सकते हैं या लगते रहते हैं, उनको फेस करने से पहले उनको जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम उन बातों को नहीं जानेंगे तब तक हम उनका सामना नहीं कर सकेंगे और हम बार बार अपनी स्थिति को हलचल में ले आएंगे। तो झूठे आरोपों को फेस करने के लिए, उनको सहन करने के लिए सबसे आवश्यक बात है कि उनको जानना कि हमारे जीवन में या अन्य किसी के भी जीवन में कौन कौन से झूठे आरोप लग सकते हैं या लगते हैं, किस किस प्रकार के लोग आरोप लगाते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात है कि जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, जो आधार है, जो ब्राह्मण आत्मा के जीवन का जीवन के आन मान शान है, पवित्रता, उसके प्रति झूठे आरोप लगाना। कैसे लगाते होंगे? हाँ जी, उसके प्रति भी झूठे लोग आरोप लगाते हैं ना। कैसे लगाते हैं? कि आपकी दृष्टि वृत्ति कुछ चंचल मालूम पड़ रही है, आपकी दृष्टि में कुछ खोट है, नहीं प्योरिटी के बारे में। कौन कौन से आरोप लगते होंगे? आप में फेमिनिटी संस्कार बहुत सारे हैं, आप दूसरों के अट्रैक्शन में जल्दी आ जाते हो, दूसरों पर प्रभावित होना। बाहर वाले लोग कहते हैं, सब सिर्फ कहते हैं कि हम पवित्र रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये ऐसा है नहीं। तो ब्राह्मण संसार में या दुनिया की आत्माओं से ये आरोप लगते हैं इससे संबंधित कि आपकी दृष्टि वृत्ति में कुछ कमी है, खोट है, आप कहते हो लेकिन आप जीवन में उसको अप्लाई नहीं करते हो। दूसरी बात है वाचा से संबंधित, वाचा के लिए भी लोग हम सभी पर झूठे आरोप लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? कि आप बोलते हैं लेकिन आपकी वाणी में अभिमान झलकता है, आपके वाणी में अहंकार दिखाई देता है, आप सिर्फ बोलते हो करते कुछ नहीं हो, धारणा पाई पैसे की भी नहीं है। तो ये हम सभी के वाणी के प्रति भी या किसी के भी प्रति आरोप लगते हैं, लग सकते हैं कि आपके आप बोलते तो बहुत मीठा हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ शरारत भरी होती है, जरूर कुछ स्वार्थ होगा। तो पहली बात थी प्योरिटी के बारे में, दूसरी बात वाणी के बारे में, तीसरी बात संबंध संपर्क के बारे में। जब कोई किसी के संपर्क में बार बार आता है, विशेषकर भाई या बहन एक दो के संपर्क में आते हैं और उनमें भी विशेषकर कुमार कुमारी, तो लोगों के मन में ये डाउट होता है कि ये बार बार आपस में क्यों मिल रहे हैं, क्या कारण है, जरूर कुछ तो होगा। तो उसको जाने समझे बिना ही उन पर आरोप लगा देना और फिर बाद में दूसरों को सुनाना कि ये आपस में मिलते हैं, जरूर कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कालापन है। तो इस प्रकार से किसी पर आरोप लगा देना बिना जाने, बिना समझे, बिना उस बात को वेरीफाई कराए, तो ये भी एक झूठा आरोप है जो दूसरे के चरित्र पर या हम उस पर आरोप लगाते हैं। यदि उस व्यक्ति को उस समय ये बात मालूम पड़े कि हमारे बारे में उन्होंने ऐसा ऐसा दूसरों को बताया, तो उसमें उसकी स्थिति क्या होगी? डगमग हो जाएगी। तो तीसरी बात है संबंध संपर्क में जब कोई आते हैं तो उनके प्रति झूठा आरोप लगाना। चौथी बात है हमारे जब हम कोई कार्य में आते हैं, कर्म क्षेत्र पर आते हैं, कार्य करते हैं, उस समय कई झूठे आरोप लगाना, जैसे कि हम जहां सेवाएं कर रहे हैं या जहां किसी भी फील्ड में कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस समय एक नॉर्मली व्यक्ति कहते हैं यदि किसी कारण से कोई एक बार लेट आया तो क्या कहेंगे कि आप तो हमेशा ही लेट आते हो, आपकी ये आदत ही है कि आप हमेशा ही लेट आते हो, समय पर कभी नहीं आते हो, आप तो बहुत बहानेबाज हो। क्या उसमें क्या कहते हैं, आप बहुत बहानेबाज हो, हमेशा ही कोई ना कोई बहाना बना करके लेट आते हो। कभी कहते हो कि हमारी माँ बीमार थी, कभी कहते हैं कि हमारे पेट में दर्द था, कभी सर दर्द था, मना कोई ना कोई बहाना करके आप लेट आते हो। तो ये उस समय झूठे आरोप लगाए जाते हैं जब कोई व्यक्ति किसी के साथ कार्य करता है उस समय। इसी प्रकार से हमारे ज्ञान योग के प्रति भी झूठे आरोप लगते हैं। कैसे लगते होंगे कि आपके ज्ञान योग में दिखावा बहुत है, करते कम हो दिखाते बहुत हो, या कहेंगे कि आप हमेशा ज्ञान योग में ही लगे रहते हो, कुछ सेवा तो करते नहीं हो। तो ज्ञान योग के प्रति भी कई आरोप लगते हैं। कहते हैं कि जब योग में बैठते हो तो उस समय जब देखो तब झुटका ही खाते रहते हो, तो ऐसे योग का क्या औचित्य है, इसका मतलब है, समय पर योग में नहीं आते, जब देखो तब उस समय घूमते रहते हो। हाँ जी, बाबा ने कर्मयोगी बनने के लिए कहा, लेकिन जब देखो तब आप बाबा कमरे में बैठे रहते हो, या कहेंगे कि सारा दिन सेवा में ही लगे रहते हो, ज्ञान योग का कोई अटेंशन ही नहीं है, कोई ठिकाना ही नहीं। तो ये हमारे ज्ञान योग के प्रति भी कई प्रकार के आरोप लगते रहते हैं या लग सकते हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अगली बात है भोजन के प्रति, खाने पीने के प्रति, उसके प्रति आरोप लगते हैं कि आप ब्राह्मण बने हो, किस लिए ब्राह्मण बने हो, सिर्फ खाने पीने के लिए या कुछ सेवा भी करनी है, जब देखो तब खाने पीने में ही बिजी रहते हो, ये आपका जीवन खाने पीने के लिए है, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आप खाने पीने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो। तो इस प्रकार से भी कमेंट या आरोप लग सकते हैं, ये छोटे मोटे आरोप हैं जो कमेंट के रूप में मालूम पड़ते हैं। हाँ, सेवा पर टाइम पर नहीं आते हो, लेकिन खाने के समय पर एकदम राइट टाइम पर पहुंच जाते हो। सेवा के लिए टाइम नहीं, लेकिन खाने के लिए पूरा टाइम है। इसके साथ साथ हमारे जो हमारे व्यवहारिक जीवन है उसके प्रति भी कई प्रकार के आरोप लग सकते हैं या लगते हैं। कैसे लगते होंगे, हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में, कि आप बहुत गंभीर रहते हो, जब देखो तब सबसे दूर दूर एकांत में रहते हो, जैसे कि खोए खोए रहते हो, आपके आप में मिलनसार का कोई भी विशेषता नहीं है, किसी के साथ मिलकर नहीं चलते हो, किसी के साथ आप मिलकर नहीं चल सकते हो। यदि आप ऐसा चलोगे तो सत्युग में आप कैसे आएंगे, आप में सत्युग की दुनिया के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। या कहेंगे कि आप रमणीय बहुत हो, आप बात बात में हंसी मजाक करते रहते हो, आप में जरा भी कोई गंभीरता की विशेषता दिखाई नहीं देती है, हंसी मजाक बहुत करते हो। इस प्रकार से और भी बहुत सारे जो हैं हमारे प्रैक्टिकल जीवन के बारे में ये कमेंट, ये आरोप लग सकते हैं, लगते रहते हैं। और कौन कौन सी बातें होंगी जिस पर आरोप लगते हैं, झूठे आरोप वो भी। आप टीवी बहुत देखते, कहेंगे कि आप टीवी बहुत देखते हो सकता है कि वो व्यक्ति खुद सारा दिन टीवी में बिजी रहता हो, लेकिन दूसरे को किसी ने, दूसरे को उसने एक बार भी देख लिया तो वो कमेंट जरूर करेगा कि आपको टीवी देखने का बहुत शौक है, आप सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो। बाबा ने कहा साधन साधनों का बैलेंस रखो, लेकिन आप साधनों में ही डूबे रहते हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो झूठे आरोप हैं, कई लोग आरोप लगाते हैं कि आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है, जब देखो तब कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हो, अपनी सेवाओं को छोड़ करके घूम रहे, कभी शांतिवन, कभी ज्ञान सरोवर, कभी कहीं तो कभी कहीं, सेवाओं पर कोई ध्यान ही नहीं है। हो सकता है व्यक्ति वो 6 मास के बाद गया हो, कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किसी कारण से कहीं बाहर गया, उसके बाद कुछ दिन के बाद दोबारा फिर गया किसी कारण से, तो फिर व्यक्ति उस पर ऐसे कमेंट करता है कि आपको भी घूमने फिरने का चस्का लग गया है, शौक हो गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे झूठे आरोप हैं जो कभी भी किसी पर भी लग सकते हैं। तो हमें देखना है, सबसे पहली बात है कि इन आरोपों को सुनते हुए हमें इनको कैसे सहन करना है, कैसे इनको फेस करना है। उसके लिए सबसे पहली बात है कि उनको जानना कि जीवन में ऐसे कौन कौन से आरोप लग सकते हैं, क्योंकि दुनिया जो आरोपों की दुनिया है, इस संसार में कभी भी कहीं से भी कोई भी आरोप लगा सकता है। संसार में हम देखें जो पॉलिटिकल फील्ड है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इस बात में बहुत माहिर होते हैं, किसी भी व्यक्ति पर उसके 100% बात राइट होगी, उसमें से भी कोई ना कोई नुक्स निकाल करके उसको, उस पर आरोप लगाएंगे और उनको प्रूफ भी कर देंगे कि इनके अंदर ये गलती है, इन्होंने ये गलत काम किए, और उससे पब्लिक को भड़का भी देते हैं। तो संसार में तो जो होता ही है, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में हमें देखना है कि संस्कार तो हर एक आत्मा में होते ही हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे कौन कौन से बातें हैं जो झूठे आरोपों के रूप में हमको उनको फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि उन बातों को जानना, दूसरी बात है कि उन बातों को स्वीकार कर लेना। यदि कोई हमारे पर आरोप लगा रहा है किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार का, तो उसमें दो बातें हैं। एक तो यदि आरोप सच है तो उसको स्वीकार करना, अपने आप को चेंज कर लेना, और यदि आरोप सच नहीं है, गलत है, तब भी स्वीकार करना, लेकिन दूसरे वे में ये कि ये तो होना ही है, इस संसार में आरोप लगना तो स्वाभाविक है, इस बात को स्वीकार करके चलना कि कभी भी कहीं से भी कोई भी आरोप लग सकता है। तो उस बात के लिए हमें पहले से अपने आप को तैयार रखना। तो इन दोनों रूपों से हमें स्वीकार करना है कि कभी भी कोई भी आरोप लग सकते हैं, आरोप सच है तो उसको स्वीकार करना, सॉरी करके अपने आप को चेंज कर लेना, और आरोप सच नहीं है तो भी इस बात को स्वीकार कर लेना कि आरोप तो लग सकते हैं, लगना ही है, अपने आप को समझा करके कि सब्जेक्ट तो होना ही है, जिससे अपनी अपनी स्थिति डगमग न हो, स्वयं में सहन शक्ति बढ़ सके। तो पहली बात थी स्वीकार करना, पहली बात थी जानना, दूसरी बात थी स्वीकार करना, तीसरी बात थी कि जब भी कोई आरोप लगते हैं उसको दिल पर न लेना, क्योंकि जब भी किसी पर कोई आरोप लगते हैं तो उसमें व्यक्ति हर्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय उसको अपने जो उसका सम्मान है, रेस्पेक्ट है, उस पर चोट लगती है, तो उस पर व्यक्ति हर्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो जब भी कोई आरोप लगा रहा है तो उसमें अपने आप को क्या बना लेना है, चिकना घड़ा, छुई भी नहीं बन जाना है कि किसी ने कुछ भी आरोप लगा दिया और हम दुखी हो गए। तो तीसरी बात थी कि आरोपों को सहन करने के लिए उनको दिल पर नहीं रखना है, अपने आप को उसके लिए स्ट्रांग बनाना है। चौथी बात है कि जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति को जानना कि उसका इंटेंशन क्या है, उसका आशय क्या है, उसका भावार्थ क्या है, आरोप क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उसके अपने बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर जेलसी का भाव हो सकता है। उसके अंदर अगर जेलसी का भाव होगा कि कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा है और उसको वो सहन नहीं हो रहा है तो उसकी टांग खींचने के लिए वो आरोप लगा सकता है। दूसरी बात हो सकती है कि हमने उसकी बात को नहीं माना, उसकी बात को हमने, उसने जो कहा उसको हमने स्वीकार नहीं किया, तो यह भी एक कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि उस व्यक्ति को अपनी जो प्रेस्टेज है, पोस्ट है, उसको उस पर खतरा लग रहा है, तो उसको अपनी पोस्ट को बचा के रखने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना जरूरी समझेगा वो, कि इसके माध्यम से उसको हम डाउन कर सकते हैं। हो सकता है कि उसका इंटेंशन हो कि उसको दबा के रखना है, इसको दबा के रखेंगे तो ये हमारी हर बात को मानेगा, यदि इसको हम दबाकर नहीं रखेंगे तो भविष्य में हमारे पर खतरा हो सकता है, तो अपनी सेफ्टी के लिए भी वो आरोप लगा सकता है। या हो सकता है कि उसके अंदर और भी कई सारी बातें हो सकती हैं, किसी संस्कार ही होते हैं कि दूसरों पर आरोप लगाना, तो ये भी हो सकता है कि उसके संस्कार ही ऐसे है कि वो आरोप लगा रहा है कोई ना कोई बात को लेकर के। तो उसके ऐसे बहुत सारे बात कारण हैं जो सामने वाला व्यक्ति हमारे पर झूठे आरोप लगा रहा है, उसको डर होगा या उसमें ईर्ष्या का भाव होगा, जेलसी का भाव होगा, वो दबा के रखने की कोशिश कर रहा होगा या अपनी बात मनमाने के लिए वो आरोप लगा रहा है। तो जब कोई व्यक्ति आरोप लगाता है तो उसके अंदर उसको देखना है कि उसका क्या, उसका भावार्थ है, इंटेंशन है, सचमुच हमने कोई गलती की है या उसकी अपनी कमी कमजोरी है उस कारण से वो आरोप लगा रहा है। और अगली बात है कि जब किसी पर कोई आरोप लगता है तो उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, अर्थात जब हमारे पर कोई आरोप लगेगा या लगता है, लग सकता है, उस समय स्थिति कैसी क्या हो सकती है, इस बात को जानना भी बहुत जरूरी है कि जब किसी ने हमारे पर कोई आरोप लगाया उस समय हमारी स्थिति क्या होगी। व्यर्थ संकल्पों के तूफान उत्पन्न होंगे, क्योंकि आरोप लगाना एक ऐसी सेंसिटिव एक आदत है कि जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो उसको व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, उसमें व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है, तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों के तूफान उठ सकते हैं, क्योंकि हमारे सम्मान का एक सम्मान की बात है कि यदि किसी ने हमारे पर आरोप लगाया और वो आरोप बाहर औरों के सामने फैल गया तो सामने वाले व्यक्ति क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तो अपनी प्रेस्टीज के कारण उसमें व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर पाता है, उसको फेस नहीं कर पाता है। तो इस बात को भी जानना जरूरी है कि जब आरोप लगते हैं तो उस समय हमारी स्थिति पर उसका क्या असर पड़ता है। तो जब आरोप लगते उसमें व्यक्ति हलचल में आता है, दुखी हो जाता है, बदले की भावना पैदा हो जाती है, संबंधों में दरार पैदा हो जाती है, ज्ञान योग धारणा सेवा सब चौपट हो जाता है, सबसे बैराग आ जाता है। तो इस बात को भी हमें जानना जरूरी है, यदि हमें झूठे आरोपों को सहन करना है। अगली बात है, झूठे आरोपों को सहन करने के लिए बाबा ने कहा है कि सच तो बैठो नच। यदि आप सच्चे हो तो आपको हलचल में नहीं आना है, क्योंकि सच के सूरज को कोई भी छुपा नहीं सकता है। लेकिन हमें देखना है कि जो आरोप लग रहा है उसको हमें अल्पकाल की दृष्टि से नहीं देखना है, क्योंकि होता ऐसा है कि हम उसको अल्पकाल की दृष्टि से देखते हैं कि अभी अभी जैसे कि हमारा जो अपमान हो रहा है, आरोप लग रहा है, वो सब जगह फैल जाएगा। यदि हम उसको त्रिकालदर्शी दृष्टि से देखेंगे तो तो हलचल में नहीं आएंगे, क्योंकि जो बात झूठी है वो कुछ समय के बाद सबके सामने आ जाएगी कि ये झूठा आरोप था। हाँ, तो बाबा ने जो कहा कि सच तो बैठो नच, इसलिए हमेशा खुश रहना है कि जो आरोप लग रहा है यदि वो झूठा है तो कुछ दिन के बाद वो सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगली बात है झूठे आरोपों को सहन करने के लिए ये समझना है कि ये हमारे लिए पेपर है। हम सभी ईश्वरीय विद्यार्थी हैं और हम सभी गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो जो भी हमारा एग्जाम होता है वो सब प्रैक्टिकल होता है, लिखित नहीं होता है। तो हमें देखना है कि ये जो आरोप लग रहा है, जैसे जीवन में और बहुत सारे पेपर्स आते हैं, एग्जाम आते हैं, उनको हम देते हैं, तो इसी प्रकार से ये भी एक हमारे लिए एग्जाम है, एक पेपर है। तो यदि हम उसको पेपर के रूप में लेंगे तो हमारे मन में ये भाव रहेगा कि इसको हमें पास करना है, क्योंकि विद्यार्थी माना ही जिसका लक्ष्य होता है कि हमें एग्जाम में 100 मार्क्स लेने हैं, फुल पास होना है। तो जब हम जो झूठे आरोप हैं उनको इस रूप में लेंगे कि ये हमारे जीवन में एक पेपर के रूप में है, तो उस पेपर को पास करने का हमारे अंदर एक उमंग रहेगा, उसको हम सहन कर सकेंगे। झूठे आरोपों को सहन करने के लिए एक आवश्यक विधि है, मेथड है, टिप्स है कि साक्षीपन का भाव, उसका अभ्यास बहुत अच्छा हो, क्योंकि झूठे जब आरोप लगते हैं उसमें व्यक्ति उसके प्रभाव में तब आता है जब वो हद में रहता है। जब स्थिति हद में होती है तभी उस समय व्यक्ति हलचल में आता है। यदि साक्षीपन का भाव होगा, साक्षी दृष्टि से हम किसी बात को देखेंगे, तो हम जल्दी हलचल में नहीं आएंगे। साथ साथ त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित होकर के किसी बात को देखना है कि जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं, उनका कोई भी आधार नहीं है। साथ साथ भविष्य को देख करके भी उसको फेस करना है कि हमें अपनी स्थिति भविष्य के लिए कैसा मजबूत बना के रखनी है। इसके साथ साथ और भी कई बातें हैं जिन बातों को हम यदि जीवन में अप्लाई करेंगे, उन टिप्स को अप्लाई करेंगे, तो हमारे में इन आरोपों को सहन करने की शक्ति आएगी, क्षमता आएगी। जिस समय झूठे आरोप लग रहे हो उस समय उनको सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जितना सिद्ध करने की कोशिश करेंगे उतना वो और बात बढ़ती है, बात फैलती है। इसके साथ साथ झूठे आरोपों को फेस करने के लिए अपने आप को मजबूत बना के रखना है, छुई मुई नहीं बन जाना है कि किसी ने कुछ कहा और हम सोडा वाटर हो गए, अपनी अवस्था को हमने डगमग कर लिया। एक चट्टान की तरह अपनी स्थिति को बनाकर रखनी है कि संसार में लोग जो भी कह रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं, उनका अपना काम है आरोप लगाना, और हमारा काम है अपनी स्थिति को, हमारा अपना काम है कि अपनी स्थिति को मजबूत बना के रखना। इसके लिए एक विधि ये भी अपना अप्लाई कर सकते हैं कि ये सब हिसाब किताब है। कोई व्यक्ति यदि हमारे पास झूठे आरोप लगा रहा है, हो सकता है कि अभी किसी कारण से हमने उसको उस पर आरोप लगाए होंगे, तो ये हिसाब किताब चुकती होने की एक विधि है। तो इस टिप्स को भी हम यदि ध्यान में रखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, तो हमारे में वो शक्ति इमर्ज होगी जो हम झूठे आरोपों को सहन कर सकेंगे। एक दूसरी टिप्स है कि इन झूठे आरोपों से जो नुकसान होने वाला है, उस नुकसान को भी यदि हम याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तब भी हमारे में उनको फेस करने की शक्ति इमर्ज होगी। तो जो इन झूठे आरोपों से व्यक्ति को नुकसान होता है, तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम हमारे जीवन में जो नुकसान वाली बातें हैं उनसे अपने आप को बचाना। तो नुकसान वाली बातें जो हैं, उन बातों को यदि हम पहले से ध्यान में रखेंगे, कि जब झूठे आरोप लगते उससे हमारा क्या क्या लॉस हो सकता है, तब भी हमारे में वो शक्ति इमर्ज होगी जो हम उस समय उनको फेस कर सकेंगे। जैसे कि झूठे आरोप लगते तो उस समय व्यक्ति के व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं, और यदि उन व्यर्थ संकल्पों को समय पर स्टॉप नहीं किया तो व्यर्थ संकल्प एक तूफान का रूप ले सकते हैं और उससे शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, उससे हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। तो यदि हम झूठे आरोपों से होने वाला नुकसान के बारे में जानेंगे समझेंगे तब भी हम उनसे यह सीख करके अपने आप में वो शक्ति इमर्ज करके इन आरोपों को फेस कर सकेंगे, अर्थात अपने में वो सहन शक्ति को ला सकेंगे। इसके साथ साथ अगली पॉइंट है कि झूठे आरोपों से होने वाले फायदे। सभी को इसका अनुभव होगा कि जब किसी पर कोई झूठे आरोप लगते हैं उस पर उनको बहुत सारे उससे बेनिफिट मिलता है, फायदा होता है। सभी का अनुभव है ऐसे? क्या क्या उससे फायदा होता है? सबसे पहली बात है कि उसका सबसे मोह टूट जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगाता है, विशेषकर जो कोई सगा संबंधी है जिस पर जिससे उसका बहुत प्यार है, बहुत नजदीकी है, और वो व्यक्ति यदि किसी कारण से कोई झूठा आरोप लगाता है तो उससे फिर हमारा अटैचमेंट जो है वो टूट जाता है। तो झूठे आरोपों से ये बहुत बड़ा फायदा है कि यदि कभी कोई झूठा आरोप लगता है तो उसमें हमारे मन में ये बैराग का भाव पैदा होता है, स्वतः ही बैराग आता है। वैसे हम बैराग लाने के लिए बहुत सारा प्रोत्साहित करते हैं, हो सकता है पूरी सीरीज चलानी पड़े उसके बाद भी बैराग ना आए, लेकिन झूठा आरोप जब लगता है तो उसमें एक सेकंड में बैराग इमर्ज हो जाता है। इंस्टेंट बैराग पैदा करने की एक विधि है। तो जब भी कोई झूठा आरोप लगता है तो उस समय बैराग आता है। तो ये एक उससे फायदा है। तो उससे और कौन कौन से फायदे होते हैं? हाँ, तो इससे एक ये बात भी सीखनी है कि जैसे झूठा आरोप लगाने से जैसे हमारा दिल दुखा, हमारे को कष्ट हुआ, इसी प्रकार से दूसरों का दिल न दुखे। तो इसलिए हमें भी ये सीखना है कि हमें किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना है। जैसे हमारे पर कोई आरोप लगाता है उस समय हमारा दिल दुख जाता है, दुखी होता है। तो ये शिक्षा हमारे लिए भी है कि हम दूसरे पर कोई झूठा आरोप न लगाएं, ये अपने पर भी ध्यान रखें। उसके लिए आवश्यक है उसकी कोई चर्चा ना करें। किसी की कोई छोटी सी गलती देखी तो उस गलती को हम दूसरों को ना सुनाएं, उसको बड़ा ना कर दें, राय को पहाड़ ना बना दें। हाँ, तो यदि कोई हमारे पर आरोप लगा रहा है तो और हमको मालूम पड़ा कि कोई फलाना व्यक्ति हमारे पर आरोप लगा रहा है, उस बात को भी ना फैलाना, क्योंकि जब वो बात फैलती है तो फिर एक आग की तरह सब जगह फैल जाती है और एक वातावरण व्यर्थ वातावरण बन जाता है। यदि उस बात को हम किसी को और को शेयर नहीं करते हैं तो हो सकता है वो बात वो वहां दब करके खत्म हो जाए। तो इससे राय का पहाड़ बनाना या पहाड़ का राय बनाना ये हमारे ऊपर है। तो झूठे आरोपों से और कौन कौन से फायदे होते हैं? भविष्य के लिए हम सतर्क हो जाते हैं, हम सावधान हो जाते हैं, आगे के लिए हम केयरफुल हो जाते हैं कि आगे भविष्य में कभी ऐसी कोई घटना घटती है तो हम पहले से हम स्ट्रांग बन जाते हैं, अपना पूरा ध्यान रखते हैं। शक्तिशाली बनते हैं। हाँ, जब कोई झूठा आरोप लगाता है उसमें व्यक्ति के अंदर एक पावर पैदा होती है, हमारा बाबा के प्रति प्यार पैदा हो जाता है, भगवान के प्रति हमारा प्यार बढ़ जाता है, हमारा ज्ञान योग का चार्ट बढ़ जाता है, ज्ञान योग का पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है। तो जब तक कोई नहीं झूठे आरोप लगते तो सच्चा आरोप है तो व्यक्ति हो सकता है कि वो स्थिति डगमग हो सकती है, लेकिन झूठा आरोप है और हमको मालूम है कि आरोप झूठा है तो उसमें व्यक्ति अपने ज्ञान योग के जो पुरुषार्थ है उसको आगे बढ़ा देता है, रात दिन पुरुषार्थ करता है, दिन रात बाबा कमरे में लगा रहता है। तो ये कुछ बातें हैं जो झूठे आरोप लगते हैं, उससे हमको फायदा भी होता है। तो यदि हम उन फायदों को ध्यान में रखते हैं तो हमारे में वो शक्ति पैदा होती है, वो पावर इमर्ज होती है, जो हम इन झूठे आरोपों को सहन कर सकते हैं और अपनी स्थिति को हम स्टेबल रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक विधि है कि झूठे आरोप लगने से पहले हमें पहले से ही तैयारी करके रखना है। यदि झूठे आरोप भविष्य में लग सकते हैं, लगेंगे, तो हमें पहले से क्या क्या करना चाहिए? यदि हम पहले से उनके बारे में तैयारी करके रखेंगे, रिहर्सल करेंगे, ये बहुत सारी बातें जो अभी हमने चर्चा की, इनमें से कोई भी बात के बारे में आरोप लग सकते हैं। तो यदि हम पहले से ये तैयारी करके रखेंगे तो जब वो परिस्थिति हमारे सामने आएगी तो हम हलचल में नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ये नेगेटिव चिंतन नहीं है, ये एक अपनी तैयारी के लिए, पूर्व तैयारी के लिए कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि समाज में, परिवार में, ये संगठन में होता है, तो जो बातें भविष्य में होने वाली हैं उन बातों का चिंतन करके पहले से तैयारी करना, ये भी एक पुरुषार्थ का एक हिस्सा, एक पार्ट है। तो उन बातों के लिए पहले से तैयार करके रखना कि क्या क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो हमारे पर झूठा आरोप लग सकता है। जब किसी पर कोई झूठा आरोप लगता है उस समय जो निमित्त हैं, जो बड़े हैं, उनको हम बता सकते हैं। तो फिर नहीं, बड़ों को हम बात वो बता सकते हैं, बाकी हमें ये बात तो पहले से अपने दिल में होती है कि ये झूठा आरोप है, और झूठा आरोप है तो उस पर फिर हमें बहुत सारे चिंतन नहीं करना है, क्योंकि ये बात फिर बाबा पर छोड़ देने की, भगवान साथ है, भगवान पर हमारा विश्वास है, रेस्पॉन्सिबल वो है। हो सकता है कि उसने हमें कोई एक विशेष पाठ पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए ये हमारे सामने ये पेपर लाया हुआ है। तो जब कोई झूठा आरोप लगाता है तो उसमें दूसरों को बता करके अपने आप को निश्चिंत कर देना है, उस बात के बारे में बहुत चिंतन नहीं करना है। नहीं, दूसरे पर वो आरोप नहीं लगाना, दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो फिर आपस में टकराव बढ़ जाएगा। टकराव न बढ़े इसके लिए हमें पहले से सावधानी रखनी है। बाबा ने कहा कि ये आपका जीवन है, ये आपका युद्ध का मैदान है, आप युद्ध के मैदान में हो, जब तक आप अपनी स्थिति को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तब तक आपको इन बातों को फेस करना पड़ेगा। जब आप अपनी स्थिति को स्ट्रांग बना लेंगे तो ये बातें आपके जीवन से स्वतः ही निकल जाएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इन बातों को कब तक फेस करना है। आपको 10 साल तक फेस करना है, 1 साल तक फेस करना है, या आपको आजीवन फेस करना है? यदि आपको आजीवन फेस करना है तो अपनी स्थिति को स्ट्रांग न बनाएं। आपको आजीवन, आपको कुछ समय तक फेस करना है तो उसके लिए पहले से अपने आप को आप मजबूत बना के रखें, तो फिर आपके आगे ये कोई बातें आरोप लगाने की होंगे तो आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा कि आप इस ब्राह्मण जीवन में आपके जो स्लोगन्स हैं कि झुक झुक मरमर सिख सिख, तो जब भी कोई ऐसे आरोप लगते हैं तो उसमें आपको उनसे सीखना है। आपके इनर पावर को बढ़ाना है, उसको इमर्ज करना है, क्योंकि हम सभी युद्ध के मैदान में। कई बार क्या होता है कि हम समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन जो मौजों का जीवन है, इसलिए इस जीवन में मौज ही मौज होनी चाहिए, लेकिन बाबा ने यह भी कहा कि ये ब्राह्मण जीवन ये युद्ध का मैदान है। तो इस युद्ध के मैदान में ऐसी बहुत सारी बातें तो आएंगी, होने ही हैं, इसलिए उस बात को भी हमें ध्यान में रख करके चलना है कि जो झूठे आरोप लगते हैं उनको भी हमें फेस करना है। हाँ, झूठे आरोप हमारे पर लग रहे हैं, दूसरों के लिए वो सत्य हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि सत्य के सुर को कभी भी कोई भी छुपा नहीं सकता है। तो यहां यह टॉपिक था कि झूठे आरोप लगते हैं तो वहां ये स्थिति है, अगर आरोप सच है तो वो सच है, तो उसके लिए हमें फिर स्वीकार करना है। आरोप झूठा है तो उसके लिए जो सारी बातें करनी है जिससे हमारी स्थिति डगमग ना हो, हमारे में वो सहन शक्ति बढ़े और हम बातों को फेस कर सकें। उस समय एक बात यह भी होती है कि जब कोई झूठा आरोप लगाता है तो हमारे अंदर में, हमारे मन में जो व्यर्थ संकल्प, अशुभ भावनाओं के रूप में इमर्ज होती है। उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में अशुभ भाव भावनाएं पैदा होती है, बदले का भाव पैदा होता है। तो उसके लिए हमें अपने मन में शुभ भावना शुभ कामनाओं का स्टॉक भी जमा करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति हमारे ऊपर झूठे आरोप झूठे इल्जाम लगा रहा है उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक भी होना चाहिए और वो स्टॉक हमें पहले से जमा करके रखना है, जिस समय वो परिस्थिति आए तो हम उसको अप्लाई कर सकें। साथ साथ एक ये भी टिप्स है कि जो व्यक्ति झूठा आरोप लगा रहा है उस व्यक्ति को सकाश दे करके उसके मन को शांत करना, क्योंकि उसको हम मुख से बोल करके तो ये प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन उस व्यक्ति को अमृत वेले इमर्ज करके उससे वार्तालाप करके कि भाई आप जो झूठा आरोप लगा रहा है जो कह रहे हो ऐसा है नहीं, तो हरेक के लिए वो बात लागू नहीं होती है। तो उस व्यक्ति के प्रति मंचा सकाश के माध्यम से उसके मन को परिवर्तन करना, उसकी भावनाओं को चेंज करना, जो उसकी सोच है झूठे आरोप लगाने की या उसकी जो भावनाएं हैं जो उसका इंटेंशन है जिस कारण से वो झूठा आरोप लगा रहा है उसके मन को परिवर्तन करना। तो सकाश के माध्यम से भी हम उसके मन को परिवर्तन कर सकते हैं जिसके द्वारा अपनी स्थिति को हम मेंटेन रख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी कि जब किसी पर कोई झूठा आरोप लगता है झूठा इल्जाम लगता है जो व्यक्ति जो हमारे मन को हमारे दिल को हर्ट करता है हमारी स्थिति को डगमग करता है हमारे जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ को धराशायी कर देता है, तो उस झूठे आरोपों को हमें कैसे सहन करना है, तो उसमें पहली बात थी कि उनको जानना कि कौन कौन से आरोप लग सकते हैं, दूसरी बात थी कि उनको स्वीकार करना, यदि आरोप सच है तो उसको अपने आप को चेंज कर लेना, यदि आरोप सच नहीं है फिर भी ये बात स्वीकार कर लेना कि ये आरोप तो लगने ही है, तीसरी बात थी उसको पेपर समझना ये पेपर है और पेपर को हमें पास करना ही है, चौथी बात थी कि दिल पर उनको नहीं रखना है, आरोपी को जानना कि उसकी उसकी भावनाएं क्या थी उसका इंटेंशन क्या था उसको जानना भी आवश्यक है, और अगली पॉइंट कौन से थे, सच पर विश्वास, सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, सच का सूर्य कभी भी छुप नहीं सकता है, भगवान पर विश्वास, सत्यमेव जयते, और कौन कौन सी बातें थी कि उससे जो नुकसान होने वाले हैं उन नुकसानों को जानना तब भी हम उसके प्रति अलर्ट रहते हैं, साथ साथ उनसे जो फायदा होने वाले हैं उन फायदों को जानना, तो आरोपों से मिल होने वाले फायदों को जानेंगे तब भी हम अपने आप को अलर्ट रख सकते हैं, अपनी जो इनर पावर उसको हम बढ़ा सकते हैं और उन आरोपों को हम फेस कर सकते हैं, उनको पेपर समझेंगे, साक्षी भाव लाना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के उनको हम फेस करेंगे, अपने नेचर को सेंसिटिव नहीं बनाना है, छुई मुई नहीं बनना है, जिद्द सिद्ध नहीं करना है, हिसाब किताब समझना है, सकाश देनी है। तो इन सभी बातों को इन सभी टिप्स को हम जीवन में यदि अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास झूठे आरोप लगते हैं लग सकते हैं उनको हम खुशी खुशी से सहन करेंगे और अपनी स्थिति को हम मेंटेन रख सकेंगे। हाँ, ये भी देखना है कि ये ड्रामा है ये खेल है, यदि आरोप लग रहे हैं तो ये भी इसको भी एक खेल के रूप में देखनी है, इनको हमें खेल के रूप में लेनी है, इनको गंभीरता से नहीं लेनी है, ये इनको खेल समझेंगे तब भी हम उनको एंजॉय कर सकेंगे, अर्थात स्थिति को डगमग नहीं होने देंगे, एंजॉय करना अर्थात स्थिति डगमग ना हो, हमारी स्थिति डगमग नहीं है तो हम जैसे कि उनको एंजॉय कर रहे हैं, इनको कार्टून शो समझना है, इनको एक फायर समझना है जिससे हमें पार करना है, उस फायर से हम पार करेंगे तो हम रियल गोल्ड बनेंगे, तो ये भी एक फायर है जिसको हम पार कर सकेंगे तो उससे हम बहुत कुछ सीखेंगे, ये कसौटी भी है जो हमारे ज्ञान योग को हमारी स्थिति को हमारे पुरुषार्थ को मजबूत कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि आप कहां तक पहुंचे हो, ये एक माइलस्टोन भी है, जो हमारी स्थिति को ये प्रूव कर रहा है कि आप कहां तक स्ट्रांग बने हो, आप स्ट्रांग बने हैं या अभी तक आप वहीं जहां थे वहीं खड़े हैं। इससे हमारी परीक्षा भी होती है, शक्ति परीक्षण। ये हमारी शक्ति परीक्षण भी, इसमें हम कहां तक पास हुए हैं, पास हुए या फेल हुए, क्या हमारी स्थिति है, वो हमें उससे मालूम पड़ता है। हाँ हाँ, मूर्ति बन रहे, ये भी एक बात है कि हम मूर्ति बन रहे। तो जहाँ मूर्ति ऐसे मान ले बहुत प्यार से नहीं बनती है, उसको हथौड़ी छेने से उसको ठोक ठोक करके उसको बनाया जाता है। तो ये छेने, उनको जो आरोप है उनको छेने हथौड़ा समझना है कि ये छेने हथौड़ा है जो हमारे को मूर्ति बनाने में ये मददगार है, सहयोगी है। तो इस प्रकार से हम इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो हम अपनी स्थिति को मजबूत बना सकेंगे और हम इन आरोपों को खुशी खुशी से सहन करते हुए, उनको फेस करते हुए पास करते हुए अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाते हुए इस पुरुषार्थी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी मंजिल को हम प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।
अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर मुख में सुख भरपूर। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर मुख में सुख भरपूर। शांति की सौगात ले कर जग को लुटाते रहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है।